हमने टू पाकिस्तान की एपिसोड वन में डिस्कस किया था द कन्फ्लेशन ऑफ द पाकिस्तानी आइडेंटिटी विथ द इस्लामिक आइडेंटिटी, और थोड़ा बहुत पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन कराची भी डिस्कस किया था, जो डॉक्टर मोहम्मद वसीम की किताब है पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान, हम उस पर ये पूरी सीरीज़ कर रहे हैं। और आज की जो एपिसोड है वो उनके चैप्टर टू को देख रही है, मास्टर नैरेटिव, कि पाकिस्तान का मास्टर नैरेटिव था क्या। आपने यूट्यूब पर कई वीडियोस देखी होंगी, कई क्लिकबेट थंबनेल्स देखे होंगे, ये सेक्युलर्स वर्सेस लिबरल्स, जो एक तबका है जो अपने आप को रिलीजियस कहता है वो आपको गुस्सा दिलाता रहता है कि ये सेक्युलर लिबरल्स पाकिस्तान तबाह कर रहे हैं, उस पर वो लाइक्स लेता रहता है। दूसरी तरफ एक इंट्रेंच्ड आवाम बन गई है या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स बन गए हैं कि भाई हम लिबरल पर्सपेक्टिव देंगे। ये अक्सर लोग कोलैब करके डीसी वर्सेस मार्वल वीडियोस बनाकर लाइक्स लेकर सेंसेशनलिज्म क्रिएट कर मेरी नज़र में नॉनसेंस डिबेट्स करते हैं, क्योंकि ये जो डिबेट है डिबेट एक बहुत कंस्ट्रक्टिव चीज़ है, वो पाकिस्तान में इट्स बिन रिड्यूस्ड टू नेम कॉलिंग। अगर आप इसलिए डिबेट कर रहे हैं कि मैं ऐसी बातें करूंगा कि दूसरी साइड जलील हो जाए, मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो वाहवा करें और दूसरी साइड के जो फॉलोअर्स हैं वो वाहवा करें, नथिंग कंस्ट्रक्टिव हैपेंस, इट्स नॉट वेरी हेल्पफुल। तो ये जो एक सिंपलिस्टिक नोशन है सेक्युलर्स वर्सेस कंजर्वेटिव्स, इसको ज़रा साइड पे रख के अगर जो टू पाकिस्तान सीरीज़ का मकसद है कि जो दरख्त लगे हुए हैं उनको जब पौधे वो लगाए गए थे उनमें क्या मसले मसाइल थे या रूट्स में क्या ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से चीज़ें आज ऐसी हैं जैसी वो हैं। अभी पिछले हफ्ते एक रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का इवेंट था जिसमें मुझे बुलाया गया था, उसमें भी ये चीज़ें वाजे नज़र आ रही थी। अब वो एक ऐसी जगह थी जहाँ एवरीबडी मोर और लेस वॉज ऑन द सेम पेज, वॉज देयर फॉर द सेम कॉज एंड मोर और लेस वॉन्टेड द सेम थिंग, लेकिन उसमें भी जो हमारे लिबरल तबका है या लिबरल वॉइसेस हैं वो जिना साहब की 11 अगस्त की स्पीच को लेकर एक सेक्युलर लिबरल वर्ल्ड व्यू मोहम्मद अली जिना कायदे आज़म और पाकिस्तान का बनाकर पेश कर रहे थे। देखें, इसमें ना एक बुनियादी ताज़ाद है। अगर आपकी आइडेंटिटी में एक्सक्लूजन बिल्ट इन है तो उसके बाद आप कुछ स्पीचेस का हवाला देकर या कुछ बातों का हवाला देकर या वर्स्ट ऑफ ऑल लाइफस्टाइल का हवाला देकर उस ग्रूम नॉर्म जो बन गया है आइडेंटिटी का, जो बेसिक बेडरॉक है आइडेंटिटी का, उसको आप अलग नहीं कर सकते या हटा नहीं सकते। अगर मैं ये सिंपलिस्टिक करके आपको ये बात समझाने की कोशिश करूँ तो उम्मीद है मेरे जितने सुनने वाले हैं कम से कम बॉर्डर की दोनों साइडों पर, उनको ये इशू कम से कम नहीं होना चाहिए। अल्लाह करे ऐसा हो कि मेरी ऑडियंस ऐसी हो कि उनको ये इशू ना हो कि एक हिंदू और एक मुसलमान बच्चा जो है वो क्लासरूम में साथ पढ़ रहा हो। ये चीज़ पाकिस्तान में भी अच्छी कंसिडर की जाए, ये चीज़ इंडिया में भी अच्छी कंसिडर की जाए, इसमें किसी को मसला नहीं होना चाहिए। अब आप बच्चे की नज़र से सोचें, अगर पाकिस्तान में एक बच्चा पढ़ रहा है, मैं हूँ शहजाद है, एक 6, 7, 8, 9 साल का बच्चा, साथ मेरी क्लासमेट मेरा दोस्त है एक हिंदू है भविष्य, हम दोनों पढ़ रहे हैं। अब तारीख में मुझे बताया जा रहा है कि जी पाकिस्तान बनना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि हिंदू जो हैं वो तो मुसलमानों को अपना मज़हब प्रैक्टिस करने ही नहीं देते, वो तो शुरू से ही मुसलमानों के दुश्मन थे, वो तो एक मौका ढूंढ रहे थे कि वो मुसलमानों से बदला लें, ये तो बनिए हैं, इनको तो कभी ट्रस्ट ही नहीं किया जा सकता। और अगर तो पाकिस्तान नहीं बनता तो ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हिंदुओं ने तो सिर्फ जुल्म करने थे, इस्लाम प्रैक्टिस ही नहीं हो सकता था, तो इसलिए ये मुल्क बन गया ताकि हम इस्लाम प्रैक्टिस कर सकें, आप अल्लाह का शुक्र करें। अब ये शहजाद 6, 7, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल जो भी उम्र है शहजाद की, वो पढ़ता है, उसके जहन में ये चीज़ जाती है कि सबसे दुनिया में मेरे लिए ज़रूरी चीज़ मेरा मज़हब है, और हिंदू कौन है, हिंदू वो है जो मेरे मज़हब के ख़िलाफ़ है, मेरे ख़िलाफ़ है और मुझे मेरा मज़हब प्रैक्टिस नहीं करने देगा, और भविष्य एक हिंदू है। तो आप एक बच्चे में कॉग्निटिव डिसोनेंस बना रहे हैं ना कि भाई तुमने हिंदुओं से नफ़रत करनी है और पाकिस्तान बनना ज़रूरी था क्योंकि ये डीमंस हैं, लेकिन भविष्य भी इसी मज़हब का है, वो भी हिंदू है, वो भी उसी तरह का हिंदू है जिस तरह का हिंदू हम किताबों में लिख रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारा दोस्त है, तुम इससे बदतमीज़ी ना करो, या तुम इसके साथ बैठकर अब खाना पीना खाओ, या तुम इसको अपना इक्वल समझो या अपने बराबर समझो, या तुम इससे नफ़रत ना करो। ये दोनों आइडियाज़ एक बच्चे के जहन में साथ रह सकते हैं, तो आप एक कॉग्निटिव डिसोनेंस तो पैदा कर रहे हैं ना। इट्स ओनली नेचुरल फॉर अ चाइल्ड, और मैंने ये जोजो रैबिट का बहुत ज़्यादा हवाला दिया है, जब नाज़ी जर्मनी में बच्चों को ये बार बार बताया जाएगा कि जूज डीमंस हैं, डीमंस डीमंस, तो जब सामने उसके कोई जू आएगा वो उसको डीमन ही समझेगा ना. तो ये जो डीमनाइज किया गया है उसकी वजह से हमें इंसिडेंट्स नज़र आते हैं जहाँ अनफॉर्चुनेटली स्कूलों में अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई हिंदू बच्चा आपके साथ पढ़ रहा है या कोई माइनॉरिटी रिलीजियस माइनॉरिटी का बच्चा आपके साथ पढ़ रहा है तो कभी कभी जो मेजॉरिटी रिलीजन के स्टूडेंट्स हैं इवन शिया सुन्नी में भी ये चीज़ हमें नज़र आती है वो इस तरह की बात कर देते हैं. दैट्स हर्टफुल. नाउ फॉर मोस्ट ऑफ पाकिस्तान वी वुड नॉट वॉन्ट दिस टू हैपन. लेकिन आप इस एक्ट को तो कंडेम करते हैं कि यार कोई अगर बुरा भला कह दे या कोई अगर एक हिंदू स्टूडेंट को कोई मुस्लिम स्टूडेंट गाली दे दे. लेकिन आप ये तो देखें ना कि अगर वो 10 कर रहा है तो आप उसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सिखा रहे हैं ना. तो 9 के बाद 10 ही आएगा. इट सॉर्ट ऑफ बिकम्स इनएविटेबल. और फिर यही चीज़ हमें मैक्रो लेवल पे माशरे में नज़र आती है कि स्वीडन में अगर कोई इंसान बदतमीज़ी कर दे या इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात कर दे या कोई इवेंट कर दे आप पाकिस्तान में जाके क्रिश्चियन बस्तियों को जला देते हैं. कोई ताल्लुक है इन दोनों चीज़ों का? पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है वो अक्सर काफ़ी गरीब है. हद तक हमारी अखबारों में एड्स आते हैं कि जो स्वीपर हैं या जो गटर साफ़ करेंगे दे मस्ट बी क्रिश्चियन. तो एक कम्युनिटी है जिसको आपने इतना लोएस्ट ऑफ द लो रखा हुआ है कि हमारे जो गटर के नाले हैं उनको साफ़ करने के लिए ये कम्युनिटी है. और फिर स्वीडन में जहाँ इन लोगों को वीज़ा भी ना लगे क्योंकि ये गरीब हैं इनके पास पैसे नहीं हैं. आप लोग इन्हीं वीज़ा की लाइनों में लग रहे होते हैं. वहाँ कुछ हो जाए तो आप जाके इनकी बस्तियाँ जला देते हैं. कोई लॉजिक है इस बात में? तो ये लफ्ज़ जो हैं ये इंटरनेट पे थोड़े एक दूसरे से जंग करने के लिए कैच ऑल वर्ड्स बन गए हैं कि तुम सेकुलर हो, तुम लिबरल हो, तुम इस्लामिस्ट हो, तुम मजहबी हो. इन लफ्ज़ों इन लेबल्स को आप साइड पर रखते हैं. हम बेसिक्स पे अग्री कर लेना कि जो कन्फ्लेशन हमारी सोसाइटी में हो रही है कि पाकिस्तान में हिंदू और इंडियन का मतलब सेम है, ये कन्फ्लेशन गलत है. या इंडिया में अगर हो रही है कि पाकिस्तान और मुस्लिम का मतलब सेम है, अगर वहाँ पे कोई मुसलमान सेलिब्रिटी कोई बात करे गो बैक टू पाकिस्तान. बैक टू पाकिस्तान क्या मतलब? वो ज़िंदगी भर वहाँ पैदा हुआ है, वो एक इंडियन है. और अगर इस लफ्ज़ को भी हम देखें या इस लफ्ज़ की ओनरशिप हम देखें, इंटरेस्टिंगली जब हम ग़ज़वा हिंद की बात करते हैं या ज़ैद हामिद जैसे लोग एक वाइल्ड फैंटसीज़ देते हैं, तो वो जो हिंद का रीजन है जिस टाइम में ग़ज़वा हिंद की बातें हो रही थी वो पाकिस्तान है, वो आज का इंडिया नहीं है. तो ये जो लफ्ज़ है इंडियन हिंदू ये ड्राइव होता है सिंध से, सिंधु से, इंडस रिवर से, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है आज. तो ये बातें एब्स्ट्रैक्ट नहीं हैं. हमारी जो शनाख्त है, हमारी जो तारीख है, जब आप उससे एक स्किज़म क्रिएट करते हैं, आप उससे एक रप्चर क्रिएट करते हैं कि ये तोड़ कर अब हम बिल्कुल एक नई चीज़ बना रहे हैं. देखिए जब आप अमेरिकन हिस्ट्री की बात करते हैं उनका सेंस बनता है कि वो वापस बात करें भाई यूरोपियन रेनेसांस ये था, ब्रिटिश हिस्ट्री ये थी, फिर अमेरिकन हिस्ट्री ये थी. क्योंकि जो आजकल की अमेरिकन कौम है या जो लोग अपने आप को अमेरिकन कहते हैं वो लोग हैं जो ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स, यूरोपियन कॉलोनाइजर्स, आयरिश लोग उधर आए थे और उन्होंने जो नेटिव पॉपुलेशन है उसकी जेनोसाइड करके एक मुल्क बनाया है. तो वो सेंस बनता है कि ये मुल्क पैदा हुआ है क्योंकि जो लोग वहाँ पर रह रहे थे उनको तो आपने कत्ल कर दिया, उनकी तो हिस्ट्री आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे. लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है ना. पाकिस्तान में तो एक जीती जागती तारीख थी, एक खित्ता था, उसकी एक शनाख्त थी. तो ज़रूरी नहीं था आप उसको ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नो वेयर बनाएं, एक बिग बैंग थ्योरी की तरह कि आउट ऑफ नो वेयर द पाकिस्तानी आइडेंटिटी केम टू बी. तो डॉक्टर मोहम्मद वसीम लिखते हैं कि पाकिस्तान का जो मास्टर नैरेटिव है उसमें एंटी इंडिया सिंड्रोम है. अब यहाँ पर एक ताज़ाद पैदा होता है, जिस तरह सुहेल वड़ाइज भी कहते हैं क्यों ये खुला ताज़ाद नहीं है, कि एक तरफ तो कहते हैं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया उनकी तारीख, उनके एंसेस्टर्स, उनके आबाओ अजदाद, उनके माँ बाप सब इंडियंस थे. लेकिन अब ये लोग जो मुल्क बना रहे हैं उस आइडेंटिटी का, उस मुल्क का अब इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं होगा या वो कम्प्लीटली न्यू होगा फ्रॉम इंडिया. इट्स एन अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन. फिर जैसे जैसे इस मुल्क की तारीख बढ़ती गई, कभी उसमें वहाबिज़म आ गया, कभी उसमें जहादिज़म आ गया, कभी हमने सऊदी अरेबिया से पेट्रो डॉलर्स लेकर एक तरह का मज़हब आम कर दिया, फिर साथ साथ जब अमेरिकन वॉर हुई तो हमने अमेरिकन डॉलर्स लेकर और जहादिज़म आम कर दिया. बड़ी मुश्किलों से हमने TTP से लड़ा, लेकिन फिर पॉलिसी रिवर्स हो गई, प्रो TTP गवर्नमेंट आ गई, हाइब्रिड रिजीम आ गई, फिर अब TTP की न्यूसेंस के साथ हम लड़ रहे हैं. तो ये एक नेशनल लेवल पर एब्स्ट्रैक्ट बात ज़रूर है कि जी आइडेंटिटी क्राइसिस, पर अगर हम तारीख में देखें टू अचीव सर्टन गोल्स certain leaders, often dictators, which is why I'm rather cruel on them, have promoted certain ideas in your society which were not organic to who you are. Agar aaj koi yahan par kehta hai ki ye jo Pakistan ka khitta hai ye to hai jihadi, ye to hamesha se jihadi the, to itna koi hamara jihad ka history to nahi hai. America ki jange ladne ke liye America mein chhapi hui jihad ki kitabein Pakistan mein aam ki gayi, seminaries banayi gayi, logo ko push karke jihad ki taraf bheja gaya. To ab aap agar dekhte hain ki is tarah ki बातें आम हो रही हैं, या अब कुछ रिलीजियस यूट्यूबर्स भी इस जहनीत को, इस मेंटालिटी को, जिससे बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तान दूर हटा है. आई रिमेंबर बैक व्हेन आई वाज एट लम्स में, अब जो लोग पढ़ रहे हैं वो पाकिस्तान के कोई इलीट स्कूल से ए लेवल से पढ़कर आए हैं, तो एक बड़ा वेस्टर्न उनका लाइफस्टाइल है. पर वॉर ऑन अफ़गानिस्तान हो गई है, तो कुछ लोग अब सोच रहे हैं कि हम अफ़गानिस्तान चले जाएं. वन वुड इमेजिन कि आपके जो इलीट तबका, इलीट स्कूल्स, इलीट यूनिवर्सिटी से लोग हैं, वो लोग नहीं जाएंगे जिहाद पे. लेकिन अगर आपने खुदा के लिए मूवी देखी है, वो कई लोगों की स्टोरी थी. तो ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया था, ये जो एक आइडेंटिटी क्राइसिस बन गया था, ये पैदा किया गया डिलिबरेटली और उन लोगों ने किया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ जैसे लोगों ने, जो इनलाइटेंड मॉडरेशन की बात करते थे, जो अपने आप को लिबरल पॉजिट करते थे. उन्होंने अमेरिका से एड लेने के लिए, डॉलर्स लेने के लिए, इस तरह की चीज़ें आम की सोसाइटी में. इंटरेस्टिंगली आजकल के भी जो मज़हबी यूट्यूबर्स हैं, जो उसी वेव पे चल रहे हैं या जो उसी सेंटिमेंट पे आज खेल रहे हैं, जिस तरह ओरिया मकबूल जान को 10-20 साल से इस तरह की बातें कर रहे हैं, माशाल्लाह से गरीब के बच्चे को वो भेजते रहते हैं मदरसों में, गरीब के बच्चे को वो जिहाद पर उकसाते रहते हैं, और ख़ुद के बच्चों को वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं, अमेरिका को डॉलर्स देते हैं कि यार मेरे बच्चों को पढ़ाओ तुम लोग, और यूट्यूब के प्ले बटन शो ऑफ कर रहे होते हैं, लेकिन गरीब का बच्चा जाकर जिहाद करे, जाकर लड़े, जाकर मरे. साथ वाले मुल्क में शरिया लगा हुआ है अफ़गानिस्तान में, कोई पाकिस्तान में शरिया चाहने वाला इंसान, किसी को इतनी शरिया से मोहब्बत नहीं थी कि वो अफ़गानिस्तान जाकर रहे. किसी एक रिलीजियस यूट्यूबर जो कहता है कि उसको शरिया से इश्क है और वो तो चाहता है पूरे पाकिस्तान में शरिया नाफिज हो, एक की कहानी बता दें जो उठकर अफ़गानिस्तान गया. तो ये तो इन लोगों का हाल है, ये बस एक मंजन बेच रहे हैं अपनी दुकान चलाने के लिए. जितना जल्द आपको समझ में आ जाएगा आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी. अपनी ज़िंदगी खुदा का वास्ता है, ना बर्बाद करें. क्योंकि ये जो चीज़ अपने बच्चों, जो रिलीजियस यूट्यूबर कह रहे हैं ना कि आप ये करें, आपसे उसको पहला सवाल पूछना चाहिए, आपका बच्चा कर रहा है? अगर तो मैं जाऊं जिहाद पे, अगर तो मैं जाऊं रोडों पे लोगों को जलाना शुरू कर दूं, अगर तो मैं जाऊं बॉम्ब फाड़ना शुरू कर दूं, आपका बेटा मेरे साथ है? अगर आपका बेटा अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और मुझे आप ये कह रहे हैं कि करो, तो बेटा पहले आप उसको कहें. वापस आ जाते हैं किताब के ऊपर. डॉक्टर मोहम्मद वसीम, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो मास्टर नैरेटिव है वो बनाने के लिए हमें एक हिंदू डीमन बनाना पड़ा था, कि जो एक हिंदू है उसको डीमनाइज़ करने की ज़रूरत थी, ताकि पाकिस्तान का जो मास्टर नैरेटिव है या पाकिस्तान का जो रीज़न टू एग्जिस्ट है, दैट शुड मेक सेंस देन. तो अब आप इमेजिन करें, एक सब कॉन्टिनेंट है जिसमें मुसलमान हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो अपने आप को एक सिंगुलर आइडेंटिटी के अराउंड कोलेट करते हैं या सब एक तरह का एक दूसरे को समझते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बंगाल में रहने वाला मुसलमान और बलूचिस्तान में रहने वाला मुसलमान अपने आप को प्राइमरी आइडेंटिटी उसकी मुस्लिम हो. हो सकता है वो बलोच आइडेंटिटी उसकी प्राइमरी आइडेंटिटी हो, मुसलमान होना उसका मज़हब हो या इस्लाम उसका मज़हब हो. सेम विद द बंगाली, जिसको काफ़ी प्राइड हो कि यार मैं एक बंगाली हूँ, ये मेरी तारीख है, ये मेरी हिस्ट्री है, एंड दिस इज़ हु आई एम, दिस इज़ द लैंग्वेज दैट आई स्पीक, एंड दिस इज़ माई रिलीजन. तो इन सब डिस्पैरिट आइडेंटिटीज़ को, इन सब बिखरे हुए लोगों को अगर आपने यूनाइट करना था, तो आपको एक एनिमी बनाना था. वो एनिमी मुस्लिम लीग ने बनाया हिंदूस को. इसमें अब फिर थोड़ा ताज़ाद है कि जना अगर कहते हैं कि गांधी जो हैं वो डिक्टेटर थे, या अगर वो कहते हैं कांग्रेस जो है वो हिंदू राज थी या हिंदू रेनेसांस की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, तो पहले तो कायदे आज़म खुद कांग्रेस का हिस्सा थे. लेकिन अगर उनकी तनकीद कांग्रेस की ये है कि जी कांग्रेस जो है वो एक मज़हब के लिए बनाई गई है, एक मज़हब का राज चाहती है, प्लूरलिस्टिक नहीं है, तो फिर अगर उसके मुकाबले में इनको एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी थी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, तो इनको चाहिए था उसको प्लूरलिस्टिक बनाए. एवरीथिंग दैट ही वाज क्रिटिसाइजिंग द कांग्रेस फॉर, द मुस्लिम लीग शुड हैव बीन द ऑपोजिट ऑफ दैट, राइट? बिकॉज इफ ही सेइंग कि कांग्रेस लैक करती है प्लूरलिज्म, कांग्रेस एक फेथ बेस्ड आइडेंटिटी, एक रिलीजियस आइडेंटिटी के अराउंड और उनके राज के अराउंड एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर मुस्लिम लीग क्या है, राइट? आपने उसके बरक्स नहीं बनाए, आपने बोला आपकी भी है हम भी बना लेते हैं. वो कितनी जायज़ बात है कि कांग्रेस है या नहीं, दैट्स डिबेटेबल, बट रिगार्डलेस इफ दैट्स द परसेप्शन दैट कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ट्रूली होल्ड्स, देन वन वुड से दैट द सेम क्रिटिसिज्म दैट ही वॉज लेबलिंग द कांग्रेस विद ऑल्सो अप्लाइज टू द मुस्लिम लीग, राइट? इसलिए मैंने जो पाकिस्तान लॉस्ट की सीरीज़ की है उसमें मेरी पहली एपिसोड में हम ये डिस्कस करते हैं कि माइनॉरिटी राइट्स का जो क्वेश्चन है ना, वो अगर फोर फ्रंट पर होता एज अपोज टू एक रिलीजियस जंग का उसको रूप देना, पार्टीशन मे नॉट हैव बीन एज वायलेंट एज इट एंडेड अप बीइंग. मैं ये नहीं कह रहा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर्सनली एंटी हिंदू थे. जोगिंदर नाथ मंडल जो हैं वो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे, वो कायदे आज़म ने ही उनको बनाया, राइट? सो इट्स नॉट लाइक कि वो इन हिज पर्सनल लाइफ, इन हिज थॉट्स, इन हिज आइडियाज़ वाज अगेंस्ट हिंदूज. लेकिन देखें, जब आप एक आर्टिकुलेशन करते हैं वो मिलियंस किस तरह समझेंगे, दैट मे नॉट बी द सेम एज़ यू अंडरस्टैंड इट, राइट? और यही हुआ कि कायदे आज़म के मरने के बाद इवन पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी थी, चले मासेस तो हम छोड़ देना कि मासेस के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनके पास समझ नहीं है, दे मे हैव मिसअंडरस्टूड द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें ही इतने एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स है कि पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर, उसको पाकिस्तान छोड़ कर वापस इंडिया जाना पड़ा. तो जो लोग मुझे बहुत रेगुलरली सुन रहे हैं उनको पता होगा कि मेरी नज़र में तो जो डीमन है वो ब्रिटिश राज है. अक्सर लोग तो तनकीद करते हैं कि मैं जो क्रिटिसिज्म नहीं भी बनता वो भी कलोनियलिज्म पे डाल देता हूँ, लेकिन सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, सिस्टम ऑफ स्लेवरी तो वही था ना, असल तो डीमन वही थे और जो ये असल डिफरेंसेस क्रिएट किए हैं वो उन्होंने ही किए हैं. लेकिन जब आप उनकी जगह या कॉलोनाइजर्स की जगह हिंदुओं को या हिंदू फेथ को डीमनाइज करते हैं या डीमन बना देते हैं, तो फिर ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये डीमन है, लेकिन अब इसी डीमन के कुछ लोग तुम्हारे मुल्क में रहते हैं और ये मुल्क में रहेंगे एंड देयर फ्री टू गो टू देयर टेम्पल्स. ये कॉग्निटिव डिसोनेंस मेक सेंस, राइट? तो अगर आप डिमांड फॉर मुस्लिम होमलैंड एक सेपरेटिज्म की बेसिस पर, एक हिंदू डीमनाइजेशन की बेसिस पर आर्टिकुलेट करते हैं, तो अगर लाहौर में कोई पार्टीशन के बाद ये सोचता है कि अब तो पाकिस्तान बन गया, अब मॉल टाउन में हिंदू क्यों रह रहे हैं, या तो ये चले जाएं या इनको मार दिया जाए, लॉजिकली दैट मेक्स सेंस, इवन इफ इट्स रिपग्नेंट टू अस. मैं सिर्फ कह रहा हूँ वो सोच इनएविटेबल है. तो ये जो एक इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट है ये है, या तो आप कह दें कि भाई जो वाइट पोर्शन है पाकिस्तान का वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, हिंदुओं को यहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए, वो पाकिस्तानी नहीं है. लेकिन अगर पाकिस्तान की डिमांड इसलिए ज़रूरी थी कि हिंदू बुरे हैं, तो हिंदू पाकिस्तान में फिर कैसे रह सकते हैं? इंटरेस्टिंगली अगर आप सिंध में जाएंगे और बात करेंगे, तो यहाँ पर हिंदू कम्युनिटीज़ हैं जो कहते हैं कि जो ज़मीन है, ये जो धरती है, ये हमारी माँ है और हम तो यहाँ करोड़ों साल से रह रहे हैं, हम तो यहाँ पैदा हुए, आबाओ अजदाद सब इधर आए हैं, हम आपसे भी पहले यहाँ पर थे, आप लोग तो चले यूपी से आए हैं, हम तो हमेशा से इधर थे ना, तो वेयर द ओरिजिनल इन्हेबिटर्स, हम क्यों ये मुल्क छोड़ कर जाएँ, या हम क्यों ये धरती जो हमारी माँ है उसको छोड़ कर जाएँ? एंड ऑनेस्टली मेक्स कम्प्लीट सेंस. अब इसमें मजाया बात थोड़ी ये है कि कायदे आज़म ने कहा तो था यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, पर उन्होंने ये नहीं कहा यू आर फ्री टू देन कम बैक ऑल्सो. अगर हम एक प्लूरलिस्टिक मुल्क बनाना चाह रहे थे तो क्यों इस्लामाबाद में मंदिर नहीं बन सकता? बन सकता है ना, अगर तो हिंदू रहते हैं तो उनके पास फ्रीडम ऑफ वर्शिप है कि वो अपनी वर्शिप कर सकते हैं, वो अपने रिलीजियस फ्रीडम्स इंजॉय कर सकते हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये हक देता है, तो हक देता है तो फिर क्यों नहीं हो सकता? यहाँ अभी माइनॉरिटीज़ मार्च हुई थी तो बड़ा इस पर एक सेमेंटिक सी डिबेट चल रही थी. कुछ लोग कह रहे थे कि जी नॉन मुस्लिम कहें, माइनॉरिटी ना कहें, कुछ लोग कह रहे थे नहीं नॉन मुस्लिम तो निगेशन ऑफ आइडेंटिटी है ना, कि द मुस्लिम इज़ अ प्राइमरी आइडेंटिटी एंड वी आर नॉट दैट. अब ये सेमांटिक डिबेट इसलिए है क्योंकि होना तो ये चाहिए कि आपकी जो प्राइमरी आइडेंटिटी है उससे आप जाने जाएं. लेकिन अगर आपको कहा जाए हिंदू मार्च एट फ्रे हॉल ऑन 27 मार्च या जिस दिन भी था, वो बोलते हुए इतना डर लग रहा है तो वो हो कैसे सकती है? नहीं हो सकती ना, लेट अलोन वो एक फ्रीडम मार्च या वो एक राइट्स प्रोटेस्ट मार्च नहीं हो सकती, लेट अलोन एक दिवाली सड़क पे हो या एक होली सड़क पे हो. अगेन ये डिबेट्स रिड्यूस हो जाती हैं, ये सेक्युलर आइडिया भाई, ये पाकिस्तान का आइडिया है, ठीक है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है कि यहाँ हिंदू रह सकते हैं, तो रह सकते हैं तो फिर उनके पास रिलीजियस फ्रीडम है, तो फिर अगर वो रिलीजियस फ्रीडम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको इतनी मरोड़ क्यों पड़ जाती है कि ये पाकिस्तान के अगेंस्ट है? क्योंकि पाकिस्तान जो लिखा गया है, पाकिस्तान जो कंसीव किया गया है, पाकिस्तान का जो कानून है, उसके तो बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं है. किस चीज़ के ख़िलाफ़ है? आपके जहन में जो पाकिस्तान का आइडिया बन गया है, अगेन विच इज़ व्हाट आई एम गोइंग बैक टू, इट्स द ओरिजिनल कंसेप्शन, इज दैट एक्सक्लूजन बिल्ट इन टू इट. मतलब यहाँ पर तो ये हाल है कि अगर मजलिस हो तो सेलफोन्स बंद कर रखने पड़ते हैं कि वो सेफ़ नहीं होगा. तो कैन यू इमेजिन कि कोई हिंदू फेस्टिवल हो जो सदर की सड़कों पर चल के जा रहा हो? नहीं हो सकता, राइट? देखिए, अगर हम हिस्ट्री, टेरिटरी, कल्चर, रीत रिवाज, रस्में सबको साइड पर रखकर एक शनाख्त बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर आइडेंटिटी क्राइसिस तो पैदा होगा, फिर इस तरह की डिबेट्स तो होंगी. तो जो अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं या पाकिस्तानियत के रखवाले समझते हैं, उनको इस खित्ते की तारीख के ख़िलाफ़, इसके कानून के ख़िलाफ़, इस मुल्क के ख़िलाफ़ जो चीज़ है कि नॉन मुस्लिम्स के पास राइट है अपनी फ्रीडम है अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस का, वो उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लगेगा या पाकिस्तानी का जो ख्याल उनके जहन में उसके ख़िलाफ़ लगेगा. इसमें कभी कभी मेरी बातें भी मिसअंडरस्टैंड हो जाती हैं. लोग कहते हैं कि भैया आप पाकिस्तानी आइडेंटिटी के ख़िलाफ़ हैं. नहीं, मैं किसी भी आइडेंटिटी के निफास के ख़िलाफ़ हूँ. इट इज़ दी इन्फोर्समेंट दैट आई हैव एन इशू विथ, नॉट द थिंग इट्सेल्फ. मेरी दुनिया में सबसे पसंदीदा चीज़ है बिरयानी. आप कानून ले आएँ कि आप लंच और डिनर में सिर्फ बिरयानी खाएंगे, मैं कल बिरयानी के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करूँगा. उर्दू ज़बान बड़ी खूबसूरत ज़बान है, मेरी सारी वीडियोज़ जो हैं वो उर्दू में होती हैं, मुझे उर्दू शायरी बहुत ज़्यादा पसंद है. लेकिन अगर उसको नाफिस किया जाएगा, उसको नाफिस करने के ख़िलाफ़ हूँ मैं, उर्दू ज़बान के ख़िलाफ़ मैं नहीं हूँ. और यही हमारे खित्ते की तारीख रही है, आपको नहीं पढ़ाई जाती. मैंने बड़ा प्रीडोमिनेंटली उसको बांग्लादेश में रख कर आपको बताया है कि किस तरह बांग्लादेश की जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट की रूट्स हैं वो लैंग्वेज मूवमेंट में है, कि वो शुरू से कह रहे थे हमारी लैंग्वेज को रिकग्नाइज़ कर लो. आपने नहीं रिकग्नाइज़ किया, आपने ढाका यूनिवर्सिटी में जाकर गोलियां चला दी. वो फरवरी में, अब भी इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे इसलिए सेलिब्रेट होता है क्योंकि पाकिस्तान की रियासत ने कुछ स्टूडेंट्स पर जो अपने हक मांग रहे थे, जो अपनी लैंग्वेज की रिकग्निशन मांग रहे थे, उन पर गोली चला दी थी. तो लोग कहते हैं भाई अच्छा ये बंगालियों का मसला होगा इधर तो, वेस्ट पाकिस्तान में. जी बिल्कुल मसला था, यहाँ पर भी लोग अपनी लैंग्वेज की रिकग्निशन की बात कर रहे थे. इट्स जस्ट दैट वो आप उसको तारीख का हिस्सा नहीं बनाते. क्यों एक ऐसी ज़बान जो 3% पार्टीशन के टाइम और 1971 के बाद 7.8% की मदर टंग थी, उसको क्यों आपने एक ऐसा स्टेटस दिया जो बाकी लैंग्वेजेस से ऊपर था? इस पर हम बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं तो हम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, बट इट्स दैट सेम आइडिया, राइट? कि ये जो एक खित्ता है जहाँ पाकिस्तान बना है, इसकी अपनी कोई तारीख नहीं है, इसकी अपनी कोई कल्चर नहीं है, इसके अपनी कोई रीत और रिवाज नहीं है. मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त हैं, कॉन्टेंट क्रिएटर हैं, पंजाबी में कॉन्टेंट बनाती हैं. उनको अभी किसी ने कॉमेंट किया हुआ था उनकी पोस्ट पर, उनकी वीडियो पर, कि भाई ये अनकल्चर्ड है ये जो पंजाबी में आप इस तरह बात कर रही हैं, उर्दू में अगर इसको बात करें तो ये तमीज़दार हो जाती है. तो ये जो एक एलिवेशन है, ये जो एक हायरार्की है कि एक ज़बान दूसरी ज़बान से बेहतर है, हेंस वो ज़बान बोलने वाले दूसरी ज़बान बोलने वालों से बेहतर हैं. तो कल्चर की जो मिरास है वो एक सर्टेन कम्युनिटी के पास है, देयर बेटर देन यू ना. तो हम लोगों को उस हायरार्की में डालना शुरू कर देते हैं. इस सब के मैं ख़िलाफ़ हूँ. और बाय इन्फोर्सिंग सिंगुलर लैंग्वेज, सिंगुलर आइडेंटिटी, यू इनहेरेंटली क्रिएट दीज लीगल हायरार्कीज which then people internalize and live in a society thinking that to be true, कि हम इन लोगों से बेहतर हैं. तो जब आप पाकिस्तान की तारीख बताते हैं, आप क्यों नहीं पाकिस्तान की तारीख बताते हैं? आप क्यों बताते हैं कि एक यूपी में माइनॉरिटी प्रोविंसेस थे, उनकी ये तारीख थी, मुग़ल आए, ब्रिटिश आए, पाकिस्तान बना, बन गया. अब एक बलोच बच्चा है, एक पख्तून बच्चा है, एक पंजाबी बच्चा है, एक सिंधी बच्चा है, वो तो यही सोचेगा ना कि भाई हम जिस एरिया में रह रहे हैं ये तो बंजर थी हज़ारों साल तक. आप कराची में इतने लोग रहते हैं, मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई कराची क्या था 100 साल पहले, आप तो हक्के बक्के हो जाएंगे कि मुझे क्या पता. कराची के अराउंड जो एरिया है वो क्या था, आपको नहीं पता होगा. आपको मैं बताऊँ, लखनऊ पैक्ट आप बोलेंगे 1916 में साइन किया गया लखनऊ पैक्ट. तो आपने एक बच्चे को ये बताया हुआ है कि जो خطہ ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں جس کو آج آپ پاکستان کہتے ہیں، اس کی جو تاریخ لکھی گئی ہے وہ انڈیا میں لکھی گئی ہے. انڈیا میں جو ہوا ہے، دہلی میں جو ہوا ہے، آگرہ میں جو ہوا ہے، اصل پاکستان تو وہ ہے، اور وہ ہمیں مل نہیں سکا کیونکہ وہ ہندو میجورٹی تھی، تو وہ ہم سوٹ کیس میں ڈال کر یہاں لے آئے اور اب یہ ہو گیا ہے. اور یہ چیز ایک بیرن تھی. مطلب یہ چیزیں ہمیں بہت آبویس لگتی ہیں جب اسرائیل یہ کرتا ہے کہ کہتا ہے تیل اویو سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، حیفا سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، جافا سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، سارے نام انہوں نے بدل دیے، اپنے نام رکھ دیے، اور جو عرب نیمز تھے ان جگہوں کے ہسٹورکلی وہ ڈیلیٹ کر دیے. اور اب انہوں نے یہ ایک جھوٹ بولا کہ اسرائیل بیکیم اے لینڈ وداؤٹ پیپل فار اے پیپل وداؤٹ لینڈ، کہ یہ جو لینڈ بنا ہے اسرائیل، ادھر تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کی کوئی تاریخ ہی نہیں تھی، ہم نے آ کر بنایا ہے جو بنایا ہے. اب یہ کتنی اوفینسو بات ہے، یہ کتنا بڑا ایک اریجر ہے، اور اسی اریجر کی وجہ سے اب اتنی نفرتیں ہو گئی ہیں کہ جب ایک جینوسائڈ بھی ہو رہا ہے تو لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کی اوقات کیا ہے، ان لوگوں کی ہسٹری کیا ہے. اگر تو یہ مر گئے تو ٹھیک ہے، غزہ اسٹرپ پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بن جائیں گی، بہت اچھی چیز ہے. لیکن آپ سے اگر میں پوچھوں کہ یار اسلام آباد کیا تھا اسلام آباد بننے سے پہلے، بحریہ ٹاؤن بننے سے پہلے ان گاؤں میں کیا ہوتا تھا، کون سے مزدور تھے، کون سے فارمرز تھے، کون سے کراپس اگاتے تھے، وہ ان لوگوں کی کہانیاں نہیں تھیں، ان لوگوں کی تاریخیں نہیں تھیں، ان لوگوں کے اینسسٹرز نہیں تھے. آپ نے ڈیلیٹ کر کر، ایلیمینیٹ کر کر، وائپ آؤٹ کر کر ایک فریش ہسٹری بنائی نا. تو یہ ضروری نہیں تھا کرنا، از آل آئی ایم سینگ. یو کوڈ ہیو گیون ایکول اکنالجمنٹ ٹو دوز آئیڈیاز کہ یار اگر آپ سندھ میں ہیں تو سندھ کی ہسٹری پڑھیں، پنجاب میں تو پنجاب کی ہسٹری پڑھیں، کے پی میں تو کے پی کی ہسٹری پڑھیں، بلوچستان میں تو بلوچستان کی ہسٹری پڑھیں. اگر تو وہ پاکستان کی تاریخ سے مختلف ہے تو دونوں پڑھ لیں، کوئی اس میں مسئلہ مسائل نہیں ہیں، دونوں چیزیں پڑھ لیں. یا پاکستان اسٹڈیز کو اس طرح بنایا جائے دیٹ ٹرولی اکنالجز دی ایریا دیٹ ہیز کم ٹو بی پاکستان. یا دیل افضل نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہم نے تو ہماری آئیڈینٹیز یا ریجنل آئیڈینٹیز کو اس طرح ریڈیوس کر دیا ہے کہ 23 مارچ کو کوئی اجرک پہن کے ناچنے آ جائے گا اس کو بولیں گے ہم یہ سندھی ہے، کوئی یوں وہ مفلر ہلاتا ہوا آ جائے گا اس کو ہم بولیں گے بلوچی ہے، کوئی بھنگڑا کرتے ہوئے آ جائے گا اس کو بولیں گے ہم پنجابی ہے، اور کوئی اتن کرتے ہوئے ٹوپی پہن کر آ جائے گا اس کو بولیں گے ہم یہ پشتون ہے. دیٹس آر سم ٹوٹل سم انڈرسٹینڈنگ آف دیز کلچرس. ٹھیک ہے، اب تو میں کہہ رہا ہوں کہ کراچی میں کراچی کی تاریخ یا سندھ کی تاریخ نہیں پتہ ہوگی، پر اب سوچیں نا آپ کے اگر کوئی پشاور میں ہے اس کو کیوں نہیں پتا کہ گوادر کی ہسٹری کیا ہے. ہمیں تو گوادر صرف پی سی لگتا ہے نا، بٹ وہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ سالوں سال سے کیا تھے، کون تھے، ہمیں نہیں پتا. تو یہ تاریخیں مسخ کر کر ایک شناخت بنانا، ایک تاریخ بنانا دیٹ سم ہاؤ ڈیلیٹس ایوری تھنگ دیٹ ہیپنڈ بیفور اٹ از واٹ برتھس این آئیڈینٹی کرائسس. تو ان سب ڈسپیرٹ خیالات کو ہم تھوڑا سا اگر کیٹیگرائز کریں تو محمد وسیم کی کتاب پہ واپس آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی تین کیٹیگریز ہیں جس سے یہ پاکستان کا ماسٹر نیریٹو بنتا ہے. پہلا ہے کہ نیشن وداؤٹ ہسٹری، ابھی جو میں ساری یہ باتیں کر رہا تھا وہ اسی کیٹیگری کو تھوڑا بہت ایکسپلین کرتے ہیں کہ پاکستان نے اپنی انڈین ہسٹری کو ڈینائی کیا ہے، سینچریز آف لیوڈ ریالٹی کو انڈن کیا ہے. محمد وسیم لکھتے ہیں کہ کیوں آپ چندر گپت موریا، اشوکا، وکرمجیت، گاندھی، ٹگور کو پاکستان ہسٹری کا حصہ نہیں بنا سکتے. بہت اچھا سوال ہے، کیوں نہیں بنا سکتے؟ کے کے عزیز کا آپ کام دیکھیں مرڈر ہسٹری میں، وہ تو کہتے ہیں ڈیلیبریٹلی آپ نے جو آپ کی ہندو ہسٹری ہے اس کو ڈیلیٹ کیا ہے. ہم نے عدیل افضل کے ساتھ بھی اس کے اوپر ایک بڑی اچھی پوڈ کاسٹ کی ہے، فیصل وڑائج کے ساتھ بھی اس کے اوپر ایک بہت اچھی پوڈ کاسٹ کی ہے. اینڈ اگین لوگ اتنے سیکھ پاؤ ہو گئے تھے کہ بھائی آپ اینٹی پاکستان بات کریں. کیوں ہم اینٹی پاکستان بات کریں؟ ہم تو پاکستان جہاں ہے اس کی ہسٹری کی بات کر رہے ہیں نا. وہ ہماری ہسٹری کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہم کیوں جو انویڈر ہے اگر الیگزینڈر دا گریٹ آتا ہے اس کو ہیرو مانتے ہیں، پر جس لینڈ میں ہمارے اینسسٹرز رہتے تھے، ہمارے لوگ رہتے تھے، اس کو ہم ویلن سمجھتے ہیں یا پورس کو ہم برا سمجھتے ہیں؟ دیٹ تھنگ دیٹ آئی کیپ ہارکننگ بیک ٹو دیٹ کلونیئل بابو کلاس، بیکاز وی سی آر سیلز ان الیگزینڈر دا گریٹ، وی ڈونٹ سی آر سیلز ان پورس، وی ڈونٹ سی آر سیلز ان آر فور فادرز، وی سی آر سیلز ان دی انویڈرز، بیکاز سم ہاؤ ان کا جو تاریخ میں ہمارے رتبہ ہے وہ ایک ہائرارکی میں اوپر ہے. ہم اپنے آپ کو ارتوگرول سمجھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو नेटिव नहीं समझना चाहते, क्योंकि कलोनियलिज्म ने हमें सिखाया है कि जो नेटिव है वो तो जाहिल है, वो तो सैवेज है, वो तो अनकल्चर्ड है, तो हम वो नहीं हो सकते, तो हम या तो अरब हैं, या तो अलेक्जेंडर द ग्रेट हैं, या तो ब्रिटिश हैं. और इन दोनों पुलिंग फोर्सेस, हु यू आर, हु यू हैव बीन, हु दे डोंट टेल यू अबाउट, आपके फोर फादर्स, आपकी लिव्ड रियलिटी आपके खून में जो है, एंड हु दे प्रेजेंट यू एज बीइंग एस्पिरेशनल, इन दोनों पुलिंग फोर्सेस के बीच में वो एक कॉलोनियल बाबू क्लास इमर्ज हो गई है, जो इनको तो हकारत से ही देखती है. गोइंग बैक टू द कमेंट ऑन द पंजाबी कंटेंट क्रिएटर, कि तू पंजाबी बोलने वाली अनकल्चर्ड है, हम तुझसे ज़्यादा कल्चर्ड हैं, क्योंकि हम तुम नहीं हो, हम उनसे थोड़ा ज़्यादा करीब हैं, इवन अगर हम वो नहीं हैं तो क्या हुआ. तो ये कल्चरल हायरार्कीज जो बनी हुई हैं, दैट गिव्स बर्थ टू हेट, दैट गिव्स बर्थ टू ज़ीनोफोबिया.
पार्टीशन के बाद ये होता है कि अचानक, यानी आप इंडस वैली, वो इंडिया जो, वो इंडस वैली जिसकी वजह से ये इंडिया इंडिया है, इंडिया अगर इंडिया है तो वो इंडस रिवर की वजह से है, क्योंकि जितने भी लोग इस तरफ रहते थे वो कहते थे, उस वक्त तो दरियाओं के हिसाब से होता था ना, इंडस रिवर, हिंद, इंद, इसके पार जा रहे हैं, उस जगह पर जा रहे हैं जो इंद की तरफ है, जो हिंद की तरफ है,
सिंधु, हिंदू,
सिंधु, एक ही बात थी. तो हमने ये किया कि एक तो एक छुरी लाए, एक टोका लाए, और दरमियान से अपनी तारीख को यूं काटा कि हमारा तो पीछे से ताल्लुक ही कोई नहीं, हम तो अचानक साउथ एशिया के, सेंट्रल एशिया के साउथ से हैं. और भाई आपकी जड़ें, आपकी तारीख है, एक आध शख्स होगा जिसका डीएनए वहां का निकल आएगा, लेकिन
वो
हम सब यहां से हैं, यहाँ के बच्चे हैं, यहाँ की हमारी सदियों की तारीख है, तो ये नेशन है. हाँ, आपने सेपरेट मुल्क आपने बनाया, कोई मसला नहीं है, दुनिया में नॉर्थ कोरिया है तो एक साउथ कोरिया, ठीक है, हर मुल्क जब जब आपस में तकसीम होता है.
इसमें मोहम्मद वसीम लिखते हैं कि सिंध, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान और बंगाल पार्टीशन से पहले रिसीविंग एंड पर थे ऑफ द पॉलिसी, स्ट्रेटजी एंड आइडियोलॉजी टर्न्ड आउट बाय द मुस्लिम लीग. तो जो पाकिस्तान की कहानी थी वो मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस ऑफ इंडिया की कहानी बन गई. के अजीज़ ने भी इसके बारे में बहुत लिखा है कि अलीगढ़ मूवमेंट पे कितना ज़्यादा फोकस था, बंगाल को इग्नोर कर दिया गया, इवन दो मुस्लिम लीग बनी ही बंगाल में थी. जैसे आयशा जलाल भी कहती हैं कि वी रिप्लेस हिस्ट्री विद आइडियोलॉजी. तारीख में जाकर ये बातें करना, इन बातों को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये दरख्त जो आपको नज़र आ रहे हैं, मैं आपको थोड़ा उनकी जड़ों में जाकर समझा रहा हूँ कि इशूज़ कहाँ से पनपते हैं, कहाँ से पैदा होते हैं. आज अगर हम देखें कराची में टेंशनज हैं, अनडिनाइबल टेंशनज हैं, जब कहें कि जी सिंधी मुहाजिर टेंशनज हैं. अब अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी सराई की हेट के ऊपर, उस पर बहुत सारे ऐसे मैटर ऑफ फैक्ट कॉमेंट्स आए कि हाँ ये तो सराई की तो होते ही ऐसे हैं, इसमें बुरा क्या है, हम तो दुबई में रहते हैं, वहाँ भी सराई की ऐसे. ये इतनी हेट इंटरनलाइज हो गई है कि लोग इसको कोई एक मसला भी नहीं समझते. आपको कैसा लगे, आप फ्रांस जाएं और कोई बोले हाँ मुस्लिम तो होते ही ऐसे हैं, हो सकता है उनके कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस कुछ मुस्लिम्स के साथ हुए हों, लेकिन अगर आपको ये बात बोलेंगे तो आपको फ़ौरन इस्लामोफोबिया याद आ जाएगा. लेकिन आप जब एक पूरी कम्युनिटी को, एक पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को बुरा भला कहते हैं, आपको नहीं रियलाइज़ होता कि ये हेट्रेड है. इसमें सारा अंसारी का काम है जो लिखती हैं कि सिंध वॉज इफेक्टिवली बीहेडेड और कराची में रीपीपलिंग की गई. डॉक्टर वसीम भी लिखते हैं कि पाकिस्तान प्रोजेक्ट में कोई सेंसिटिविटी नहीं थी अबाउट कराची बीइंग अ पार्ट ऑफ सिंध. अगेन अपने इमेजिनेशन से तोड़ दिया ना, ये जो एक लव्ज़ है, सेमांटिक डिफरेंस समझते हैं हम कि कराची एंड रूरल सिंध, लेकिन देखें ना वो द पर्पज़ इट सर्व्स इज इट ब्रेक्स योर इमेजिनेशन. सो जिस तरह मैंने इसराइल फिलिस्तीन का जिक्र किया था, कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं कि 1947 से पहले तो कराची कुछ था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था, एक गांव था, एक बस्ती थी और फिर लोगों ने आकर उसको बना दिया गया. इसमें एक वजह बहुत बड़ी ये भी है कि कराची की जो इंटेलिजेंसिया थी या राइटर्स थे या जो सीन था उस टाइम का, आर्ट सीन भी था, उसमें बहुत ज़्यादा हिंदूज थे. तो हम क्योंकि वो हिस्ट्री नहीं एक्नॉलेज करना चाहते, तो इट्स ईजियर फॉर अस टू से नथिंग एग्जिस्टेड बिफोर दैट. तो हिस्टोरिकली, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड कल्चरली हर तरह से कराची सिंध का हिस्सा था, हमेशा से था, लेकिन वो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म में तोड़ा गया, पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट है उसमें तोड़ा गया. आपने सिंध गवर्नमेंट को कराची से हटाकर हैदराबाद में कर दिया, फेडरल गवर्नमेंट ने कराची पर इंक्रोच किया. सिंध गवर्नमेंट ने इस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ किए थे लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने उसको ओवर रूल कर दिया. 1948 में सिंध के चीफ मिनिस्टर को निकाल कर वहाँ एक जना लॉयलिस्ट को लगा दिया गया. तो आप अगेन दीज आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ दैट रीजनल आइडेंटिटीज़ को नहीं ड्यू एक्नॉलेजमेंट मिल रही, वो जो लोग हैं जिन लोगों की लिव्ड रियलिटी है उनको दबाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है दैट नाउ यू नीड टू सीज टू बी सिंधीज, नाउ यू नीड टू बिकम पाकिस्तानीज, एन आइडेंटिटी दैट्स डिफरेंट फ्रॉम द आइडेंटिटी दैट यू हैव लिव्ड विद फॉर सो मेनी ईयर्स. खैर ये बातें हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, ये बहुत डिटेल में चैप्टर टू में दिखा गया, आप जाकर प्लीज़ किताब पढ़ लें. फिर हम थर्ड कैटेगरी में आते हैं जो मॉडर्निस्ट वर्सेज लॉयलिस्ट हो गई है, जो इस वीडियो का थंबनेल भी है थोड़ा बहुत, के एक तरह जो सेक्युलर लिबरल और इस्लामिस्ट डिबेट चल रही होती है जो मैंने शुरू में भी डिस्कस किया है. तो पाकिस्तान मूवमेंट में देवबंदी और बरेलवी मज़हब के लोगों ने मासेस को मोबिलाइज किया अराउंड द मुस्लिम आइडेंटिटी, पर मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप थी वो तो पढ़ी लिखी थी, उनका जो अपना लाइफस्टाइल था वो शरिया कंप्लायंट तो नहीं कह सकते आप, कुछ लोग नाराज़ हों उनको बुरा भला लगे, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा इसका हिस्टोरिकल फैक्ट है कि कायद आज़म ड्रिंक भी करते थे, या उनकी जो ग्रोसरी लिस्ट है उसमें क्या क्या आइटम्स आते थे सबको ही पता है. मोस्ट प्रॉबेबली उनको नमाज़ पढ़ने भी नहीं आती थी, तो वो उस तरह से एक मुल्ला नहीं थे जिस तरह से उनको शायद पेश किया गया है, या लोग वो उनको उस तरह से पेश करते हैं ताकि फिर वो पाकिस्तान का जो ढांचा बना सकें वो भी एक तरह का बना सकें. तो ये एक तज़ाद पैदा हो जाता है कि एक तरफ मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप है दे कम फ्राम दिस एंग्लिसाइज वेस्टर्न एजुकेटेड वर्ल्ड विद सर्टन आइडियाज़ अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, स्टेट क्राफ्ट, और जो मासेज हैं और जिनको पाकिस्तान मूवमेंट के लिए मोबिलाइज किया जा रहा है दे आर कमिंग विद अ कम्प्लीटली डिफरेंट आइडिया ऑफ वॉट रिलीजन इज एंड वॉट रिलीजन मीन्स टू दैम एंड वॉट रिलीजन विल मीन टू पाकिस्तान. तो ये ऑलरेडी एक क्लैश आ गया बिटवीन दोज ट्रेडिशनलिस्ट एंड द मॉडर्निस्ट. मॉडर्निस्ट इस मोहम्मद वसीम उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो मुस्लिम लीग का सॉर्ट ऑफ थिंक टैंक था. इंटरेस्टिंगली इसमें जमात इस्लामी के जो फाउंडर है मौलाना मौदूदी वो तो पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे. तो ये जो इख्तलाफात हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अब वो 70 साल 80 साल बाद आपको यूट्यूब पर प्ले आउट होती हुई नज़र आ रही हैं, जहाँ सेकुलर लिबरल्स और इस्लामिस्ट एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं, बुरा भला कह रहे होते हैं, सेंसेशनलिज्म क्रिएट कर रहे होते हैं. यही डिबेट्स इंटरेस्टिंगली, वेल सिमिलर डिबेट्स ऑब्वियसली इस लेवल पर नहीं, 1938 में मुस्लिम लीग के अंदर भी हो रही थी, जहाँ पर ये बातें हो रही थी कि मौलवियों ने अफगानिस्तान और टर्की और ईरान को तो बर्बाद कर दिया है तो इनको दूर रखो. अगेन दीज वर थिंग्स दैट वर बीइंग डिस्कस्ड इन द मुस्लिम लीग, आर पार्ट ऑफ द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, की ये डिबेट्स, ये बातें वहाँ पर हो रही थी. ट्रेडिशनलिस्ट जो हैं उनको लगता था कि हम इन मॉडर्निस्ट को इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान बन गया तो हम इस पाकिस्तान के आइडिया को कोऑप्ट कर लेंगे. साथ ही साथ कहीं ना कहीं मॉडर्निस्ट भी ये सोच रहे होंगे कि हम ये इस्लाम को थोड़ा ना कोऑप्ट करके, यूज़ करके, मुस्लिम होमलैंड के अराउंड मासेस को मोबिलाइज करके एक दफ़ा पाकिस्तान बन गया देन यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स. तो वो जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान हम आपको बेच रहे थे, पाकिस्तान होगा वैसा नहीं, पाकिस्तान विल बी वेरी सिमिलर टू अ मॉडर्न नेशन स्टेट विथ फ्रीडम्स फॉर एवरीबडी, लेकिन अभी हम मज़हब को इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान बनाने के लिए, या अगर आयशा जलाल का काम पड़े तो एक बार्गेनिंग चिप के लिए अपना फ्रीडम, या विद इन द फेडरेशन अपने राइट्स, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लेने के लिए. इसमें अगर आप मेरी राय जानना चाहें तो हमारी एक पूरी सीरीज़ है हुसैन हक्कानी की किताब बिटवीन द मॉस्क एंड द मिलिट्री की, कि किस तरह ये एस्टैब्लिशमेंट ने मज़हब को कोऑप्ट किया है अपने गेंस के लिए, और ये शुरू से चलता आ रहा है. हम बाद में जब चौथी वीडियो में इस सीरीज़ के एपिसोड में जब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे, लियाकत अली खान की खुद की ज़िंदगी भी है, वो जो हुसैन हक्कानी की ग्रैंड डिलूजन्स, मैग्निफिसेंट डिलूजन्स अमेरिका पाकिस्तान रिलेशनशिप के बारे में है, उसमें कुछ बातें लिखी गई हैं, तो आपको नज़र आएगा कि लियाकत अली खान की भी जो ज़िंदगी है वो भी इतनी कोई शरिया कंप्लायंट नहीं थी. फिर जब अयूब खान आए उन्होंने तो सीधा सीधा मज़हब को इस्तेमाल किया गया. वो इट्स ऑलमोस्ट लाइक व्हाट अयूब खान वांटेड बिकेम इस्लामिक. भाई ये अयूब खान चाहते हैं आप फतवा लेकर आओ कि ये हो जाए, इस तरह उन्होंने मज़हब को इस्तेमाल किया. ज़ियाउल हक़ ने तो फिर दोनों ही चीज़ें अपने अंदर ही मर्ज कर ली ना, कि सब भी मैं हूँ, फिरौन भी मैं हूँ, मूसा भी मैं हूँ, हर चीज़ ही मैं हूँ. तो ज़ियाउल हक़ ने अपनी ही आइडेंटिटी पाकिस्तान की आइडेंटिटी बना दी. ये कोट हमने शायद पहली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ज़ियाउल हक़ ये बात समझ गए थे कि भाई अगर टर्की में से आप ये इस्लामिक मिशन निकाल दें तो वो टर्की रहेगा, अगर आप अफगानिस्तान से ईरान से निकाल दें इस्लामिक मिशन तो वो ईरान ही रहेगा, लेकिन पाकिस्तान से अगर आप इस्लामिक मिशन निकाल दें तो फिर वो इंडिया बन जाएगा. तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम इसको अपना रीजन टू एग्जिस्ट बनाए. तो ब्रिंगिंग इट ऑल टुगेदर, ये जो अब हम डिबेट्स माइंड मत कीजिएगा फालतू की हो रही होती हैं कि ये पाकिस्तान है वो पाकिस्तान है ये पाकिस्तान नहीं है, इज दिस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हर चीज़ पर लगा दिया जाता है टाइटल, ये फालतू इसलिए हैं क्योंकि हमारा जो जेनेसिस है उसमें ही समहाउ बिल्ट इन ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि मज़हब का हमने डिस्कस कर लिया, फिर खित्ते की भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है या एक कॉन्फ्लिक्ट है कि जो लोग डिक्टेट कर रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो मिलिट्री है. इंटरेस्टिंगली जो मेरी बांग्लादेश पे वीडियो थी उस पर कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आप क्यों कहते हैं कि पंजाब ने टेक ओवर कर लिया जबकि अयूब खान या खान जो हैं वो तो पश्तून थे और सिकंदर मिर्ज़ा जो हैं बंगाली थे. इन माई ओपिनियन अयूब खान एंड याया खान वर प्रोडक्ट्स ऑफ कलोनियलिज्म, वो एक कलोनियल ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा थे. सो देवर प्रोडक्ट्स ऑफ कलोनियलिज्म, उस तरह से दे वर्न्ट कनेक्टेड टू हिस्टोरिकली टू द पश्तून आइडेंटिटी. आप उनका रहना सहना देखें, अभी मैंने वीडियो के एंड में याया खान की स्पीचेस भी रखाई थी, आप जाकर देख लें, आप जाकर सुन लें. वो अपने आप को उस तरह से पश्तून नहीं समझते, वो अपने आप को कलोनियल बाबू क्लास ही समझते थे. एंड एज मच एज इमरान खान हैज़ ट्राइड सेलिंग यू दिस आइडिया कि वो मैन ऑफ द पीपल हैं, वो पेशावरी चप्पल पहनते हैं, शलवार कमीज पहनते हैं, हिज कंसेप्शन ऑफ हु ही इज़ ऑल्सो रिगर्जिटेशन ऑफ कलोनियल आइडियाज़. अगर वो अपनी किताब में लिखते हैं कि पश्तून मार्शल रेसेस हैं और वही कलोनियल ट्रोप्स को इस्तेमाल करके एक आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं पश्तून की अपने जहन में, या समझते हैं कि भाई ये लोग तो औरतों को देख के बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि ये जॉनथन आपकी तरह नहीं है, वो बहुत सारे कलोनियल आइडियाज़ हैं जो रिगर्जिटेट कर रहे हैं वो लोग. डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं, वापस आते हैं. मुस्लिम लीग आई यूपी से, वेस्ट पाकिस्तान में उन लोगों ने मुल्क बनाया जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी, जहाँ उनका वोटर बेस नहीं था. सो दे केम फ्रॉम मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस विद सर्टन आइडियाज़ विच मे हैव बीन अ लॉट मोर रेलिवेंट इन दोज मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस एंड मेड अ कंट्री इन अ रीजन विच डिडंट हैव मच टू डू विद वेयर देवर कमिंग फ्राम एंड हुज लिव्ड रियालिटी मे हैव डिफर्ड सिवियरली फ्राम द लिव्ड रियालिटी ऑफ द रीजन देवर कमिंग फ्राम. तो ये वो टू पाकिस्तान फिर बन गए कि एक आइडिया ऑफ पाकिस्तान, एक नज़रिया है पाकिस्तान और एक लोगों की ज़िंदगी, एक लोगों की लिव्ड रियलिटी. तो अगर वो जो तीन कैटेगरीज थी, नेशन विदाउट हिस्ट्री, आपने जो इस खित्ते की तारीख है उसको मिटा कर एक आइडेंटिटी, एक हिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश की, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट बन गया. साथ ही साथ आपने हिंदुओं को डीमनाइज किया, फिर आप कहते हैं कि भाई हिंदू इस मुल्क में रहते भी हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं, तो वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट बन गया. और फिर लास्टली जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि ट्रेडिशनलिस्ट और मॉडर्निस्ट, मुस्लिम लीग के जो आइडियाज़ थे पाकिस्तान के बारे में, मासेस को जिनको मोबिलाइज़ किया उनके पाकिस्तान के बारे में जो आइडियाज़ थे, उसके बीच की जो कन्फ्यूजन है, उसके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो आज तक प्ले आउट हो रहा है. और आज तक फिर लोग यही डिबेट करते रहते हैं कि कायदे आज़म किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे. अगर आप मौलवियों से पूछें तो उनकी नज़र में इतनी बड़ी दाढ़ी थी कायदे आज़म की, और अगर आप सेक्युलर लिबरल से पूछें तो उनकी नज़र में पाकिस्तान की तारीख या सब कॉन्टिनेंट की तारीख में सबसे बड़ा सेक्युलर लिबरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे. दोनों चीज़ें ज़ाहरी बात है सच नहीं हैं, लेकिन दोनों एक नैरेटिव, एक आइडियोलॉजी की बेसिस पर डिबेट कर रहे होते हैं, एज अपोज टू लुकिंग एट द फैक्ट्स एंड रियलाइजिंग दैट हिस्ट्री इज़ ऑलवेज ग्रे एंड मर्की. एंड आप लोगों को दोनों राय मिल जाएंगी, और हमारी जो तारीख है उसमें इतना मवाद दोनों साइड्स के लिए है कि वो दोनों लड़ते रहें, डिबेट करते रहें, और ये ना समझें कि बोथ दीज आइडियाज़ एग्जिस्ट टुगेदर. कि जो हिस्ट्री होती है ना, ये जो हिस्ट्री का डायलेक्टिक होता है कि दोनों आइडियाज़ साथ होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट में एग्जिस्ट करते हैं. कभी कभी एक आइडिया बढ़कर आ जाता है, तो जिस तरह देखें हमने 1970s में अवामी लीग और PPP को वोट मिला, तो ये सोशलिस्ट आइडियाज़ हैं, अवामी आइडियाज़ हैं, इकोनॉमिक आइडियाज़ हैं, वो ऑल ऑफ अ सडन ऊपर आ गए. ऑल ऑफ अ सडन रीजनल आइडेंटिटीज बिकेम इम्पॉर्टेंट. ऑल ऑफ अ सडन एक कॉन्स्टिट्यूशन जो सब को रिकग्नाइज कर रहा है बनना शुरू हो गया. तो जब ये फोर्सफुली आया तो उसका एक फोर्सफुल रिएक्शन आया और ज़ियाउल हक फट कर आ गया. तो ये डायलेक्टिक होती है हिस्ट्री, इट्स नॉट as unidimensional as it is sold to you. तो अब थोड़ा इस तारीख को हम प्रेजेंट में प्ले आउट करते हुए देखेंगे. अगली एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के जो दो पावर सेंटर्स हैं, चौथी एपिसोड इंटरेस्टिंग होगी, जो एस्टैब्लिशमेंट और डेमोक्रेसी, विच आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर वेटिंग फॉर. बट उससे पहले जो दो पावर सेंटर्स हैं, कि एक तरफ स्टेट का एलीट है, एक तरफ जो पॉलिटिकल क्लास है, और बीच में जो मिडिल क्लास है जो स्टेट के साथ हमारी अलाइन हो जाती है. अगेन इस पॉडकास्ट में तो बहुत डिस्कस होता है मिडिल क्लास है क्या, करेंगे डिस्कस वो अगली एपिसोड में करेंगे. होपफुली दिस एपिसोड हेल्प्ड यू अंडरस्टैंड कि ये जो इस पाकिस्तान सेक्युलर, इस पाकिस्तान इस्लामिक, इस डिबेट या इस सिंपलिस्टिक नोशंस को अगर हम साइड पे रखें तो आर हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट्स फाइन टू एक्नॉलेज दैट सर्टेन मिस्टेक्स वर मेड एंड वी शुड रेक्टिफाई देम इवन टुडे, ताकि कल जो है ना हमारा वो बेहतर हो, रिगार्डलेस ऑफ वॉट पीपल हु डाइड अ सेंचुरी अगो वॉन्टेड.